ये मुसलमान के लिए इंतहाई तौर पर मसर्रत की बात है, लेकिन मसर्रत और शादमानी के इस मौके पर न कौन सा तरीका है कि जिसको इख्तियार करने से हम दुनिया के उन लोगों से मुख्तलिफ हों जिन्होंने अपने बड़ों को उनकी जिंदगियों में सर पर बिठाया और मौत के बाद साल में एक मरतबा उनको याद किया है। मुसलमान आकाए नामदार फिदाउदी मौनी मोहम्मद अरबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। दुनियावी शख्सियात कितनी भी मेहनत की जाए लेकिन साल में एक मरतबा उनको याद करते हैं। उनके जन्मदिन पर उनको याद किया जाता है, साल भर के लिए उनको भुला दिया जाता है। बदलते हुए जमाने के रंग सीरत पाक से हमारी बेरुखी सरकार की सुन्नतों से एराज शायद इन तमाम चीजों ने मजबूर किया होगा उन लोगों को कि वो सीरत के जल से लेकर सरकार की जिंदगी की नश्वरिशात करें। अब जबकि ये जल से मुनाफिक ही होते हैं तो फिर सरकार की ताबनाक जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू जिससे हम जिंदगी में इस्तेफादा कर सकते हैं उसको कहना चाहिए और अमल की नीयत से सुनना चाहिए। और शायर का ख्याल सही है कि जिक्र रसूल कम नहीं वसल रसूल से। आका का जिक्र हो जाए किसी महफिल में किसी मजलिस में मैं तो नहीं समझता कि किसी आलिम की किसी मुकर्रिब की किसी दाई की तकरीर सरकार की किसी हदीस या सीरत पाक से रिलेटेड न होकर तकरीर बनती हो। मैं उसे तकरीर नहीं मानता। उलमा जितने भी बयान करेंगे दाई जितनी भी दीन की बात करेगा सब सीरत पाक की सीरत पाक है, कोई तकरीर सीरत के उन्वान से बाहर नहीं होगी। हम दावत की बात करेंगे तो सरकार की दावत सामने आ जाएगी। हम नमाज की बात करेंगे तो सरकार की नमाज सामने आ जाएगी। आप रोजों की बात करेंगे तो रोजे की हकीकत सरकार समझाएंगे। जितनी तकरीरें हैं सब तकरीरें सीरत की तकरीरें हैं। अब ये अलग बात है कि हम अनुमान कायम कर मुझे ये बताइए कि सरकार की नमाज को समझे बगैर क्या हमारी नमाज नमाज बन सकती है? और जब सरकार की नमाज का बयान करेंगे तो सीरत का बयान होगा। मस्जिद नबी शरीफ में सरकार ने मिंबर लगवाया था। मैमून नामी एक गुलाम था, बेहतरीन कारपेंटर था और आपकी जबान में गर्जर था, ये गुजरात की जबान में। उसने बेहतरीन मेंबर सरकार को बना के दिया। اس سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون حنانہ کے پاس کھڑے رہ کر خطاب فرماتے تھے، جمعہ کا اور عام بیان بھی وہیں سے ہوتے تھے. سرکار سے دوری کا جب ہم کو غم ہے تو کیوں نہ ہو، جبکہ سکون حنانہ کو سرکار سے چند گز کی دوری برداشت نہیں. جب ممبر پر سرکار تشریف فرما ہوئے تو رونے کی آواز آئی. صحابہ کرام نے دیکھنا شروع کیا کہاں سے آواز آتی ہے. جیسے مجلس واعظ میں ذرا ادھر ادھر کی کھٹکھٹ آتی ہے تو لوگ مجھے چھوڑ کر انہی کو دیکھتے ہیں اور اسی کی طرف توجہ فرماتے ہیں جیسے اسی کو سننے آئے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب تھا کہ کوئی بچہ رو رہا ہے. دیکھا یہاں قریب میں روتا ہوا کوئی انسان نظر نہیں آتا. سرکار بھی رک گئے خطبہ دیتے دیتے. رکے ہیں سرکار کبھی خطبہ دیتے دیتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ حجرے سے نکل آئے. بچوں کا پیار دیکھیے، بچوں کے ساتھ محبت دیکھیے. خطبہ دے رہے ہیں سرکار اور دیکھا کہ چادر الٹ رہی ہے حضرت حسن کی پیر میں، تو ممبر سے اترے، بچے کو گود میں اٹھا لیا اور ممبر پر جو ہے کھڑے ہو کر بچے کو گود میں لے کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا ہے بچے کی محبت مجھے مجبور کر گئی کہ خطبہ چھوڑ کر اسے اٹھا لوں. بچوں سے کس حد تک محبت ہو سکتی ہے اس کی ایک حد جو بتلا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے فرمایا یہ دونوں میرے دنیا میں جنت کے پھول ہیں. معلوم ہوا بچوں سے محبت کرنا یہ بھی سیرت مقدسہ کا ایک حصہ ہے کہ سرکار ہم کو بچوں سے کس طرح برتنا چاہیے وہ بھی سکھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون حنانہ کا رونا سنا. سوال فرمایا کہ اے حنانہ کیا چاہتا ہے بتا. اس نے کہا سرکار اب تک آپ مجھ سے سہارا لگا کر بیان فرماتے تھے، ممبر کے بننے نے آپ کو مجھ سے دور کر دیا، مجھ سے آپ کا غم برداشت نہیں ہوتا اس بنا پر کہ آپ دور ہو گئے یہ غم برداشت نہیں، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک تو ہے، یہ محبت کی بات ہے کہ تجھے مجھ سے محبت ہے اور محبت میں میرا جدائی کا غم تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بھی سمجھ میں آئی بات، لیکن تیری تمنا پوری کر سکتا ہوں کیونکہ اب تو ممبر پر رہوں گا، میں تیرے پاس نہیں آؤں، کیا کروں. علماء نے لکھا ہے کہ اس ستون کی سمجھ انسانوں کی سمجھ سے اچھی ہوتی ہے. اس ستون کا خیال انسانوں کے مقابلے میں اچھا رہا. کیا خیال کیا اس نے؟ فرمایا سرکار میری تمنا ہے کہ آپ کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے. فرمایا میں دو کام کر سکتا ہوں، یا تو مسجد نبوی میں اشارہ کروں تو تو ایک تناور درخت ہوگا جو قیامت تک رہے گا جب تک مسجد رہے گی، اور دوسرا یہ کہ تجھے کاٹ کر دفنا دوں تو کل جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ستون حنانہ نے کہا دنیا کی چند روزہ زندگی کے مقابلے میں مجھے آپ کے साथ जन्नत में हमेशा की रिहाइश मंजूर है। मुझे जन्नत में जगह दिलवा दीजिए, आपकी मैयत मिले और आपकी रफाकत मिले जन्नत में, इससे बढ़कर और क्या नेमत होगी। तो मुझे जन्नत की रफाकत चाहिए आपके साथ, यहाँ की जिंदगी खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, वहां की रफाकत हमेशा की है, मिल जाए तो नहीं। उसने मौलाना रूम ने खास तौर पर इसका तस्करा किया है। अब सरकार ने जो मिंबर बनाया इस पर खड़े हुए हैं बुजुर्ग, लोगों को मुतवज्जे किया और ऐलान फरमाया, सल्लू कमा रईतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जैसे कि मैं पढ़कर बतलाता हूँ, नमाज देखो मेरी और अपनी नमाज बनाते जाओ। हमारी बरसों से नमाज अब तक बनी नहीं, मस्जिदें अच्छी बनाते हैं हम लेकिन नमाज अच्छी नहीं बनाते। सबसे बड़ी फिक्र ये करनी चाहिए कि जहां करोड़ों की मस्जिद हम बना रहे हैं वहां जन्नत में दाखला दिलाने वाली नमाज पढ़े। हमारे पास कम से कम दो रकातों का ऐसा जखीरा हो कि अल्लाह उसे कबूल फरमा कर हमें जन्नत का दाखला अता फरमा दे कि ये तेरी दो रकातें तुझे जन्नत में दाखला दिलवाए। हम सरकार के मतवाले कहलाते हैं लेकिन सरकार की बहुत सी सुन्नतों से दूर हम लोग जिंदगी गुजारते हैं और शायद ने बहुत अच्छी बात कही, खिलाफ पैगंबर कसे रागुजी के हर गिन पर मंजिल न पाज रसी। फरमाते हैं सरकार के तरीके के खिलाफ कोई भी रास्ता चल लो कामयाबी की मंजिलें कभी नहीं मिलेगी, वो मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकता। मंजिल पर पहुंचाने वाला सरकार का और कुरान का रास्ता है। वादे ऐलान है कुरान करीम का, अजाकुम मिनल्लाही सरकार ने नमाज पढ़कर बता दी। एक साहब आए, उन्होंने मस्जिद नबी में जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और सरकार से मुलाकात का शौक है, सलाम आगे का या रसूलुल्लाह, सामने सरकार हो तो या रसूलुल्लाह में कोई बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्ले पैन नकल तो सल्ले, ठीक है तो मुलाकात के लिए आए हो लेकिन तुम्हारी मुलाकात उस वक्त करनी जब तक के सही नमाज न पढ़ लो, तुमने जो नमाज पढ़ी से नमाज नहीं कहते। सल्ले पही न कलम तो सली, नमाज नमाज नहीं। हुजूर क्या रुकू नहीं किया मैंने, क्या सज्दा नहीं किया मैंने, क्या कयाम नहीं किया मैंने, फरमाया सब किया लेकिन जैसा करना चाहिए ऐसा नहीं किया। जुमा का दिन होता है, खुतबा खत्म होने के वक्त बंदे खुदा आता है, दुआ खत्म होने से पहले रुखसत हो जाता है और चाहता है कि कैश में मेरी नमाज की कबूलियत का मुझे सवाब मिल जाए, तो मसला भी टूटता है। अखीर में आता हूं मौलाना, सबसे पहले चला जाता हूं, मेरा जुमा हो गया कि नहीं हुआ, तो करम है मेरे परवरदिगार का कि वो टूटा टूटा भी चला देता है। वरना पूरी जिंदगी की नमाजें मिला दें तो सहाबा किराम की दो रकातों के बराबर नहीं हुई। कभी किबला रुख जो खड़ा हुआ तो हरम से आने लगी सदा, तेरा दिल तो गैर सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी किबला रुख जो खड़ा के दोनों अंगूठे नमाज से काट दिए गए और खून बह रहा था, पता नहीं चला नमाज के बाद लोगों ने कहा था खून बह रहा है, पता चला किसी दाली ने अंगूठे काट दिए। कहा मुझे तो मुतलक पता नहीं चला और हजरत अली का तीर निकलता नहीं था, तो मशवरा दिया कि नमाज शुरू करूं तो खींच लेना, मैं नमाज में इतना मुस्तैद रखूंगा अल्लाह की तरफ इतनी तवज्जो होगी कि मुझे तुम्हारे तीर के खींचने की वजह से कोई दर्द महसूस नहीं हो। ये नमाज नमाज है, जिस नमाज के लिए सहाबा किराम ने मारे खाए। सलात जनाजा में क्या करते हैं, जनाजे में साथ जाएंगे, लेकिन जनाजा जहां मस्जिद की तरफ नमाज की जगह की तरफ मुड़ा, कुछ लोग किनारे पर बैठ जाएंगे, वे हम तो पाक नहीं है, हम तो नमाज नहीं पढ़ सकते, कुछ को नमाज नहीं आती सलाते जनाजा। हालांकि जनाजे में साथ चलने वाला नमाज पढ़ ले तो हदीस में फरमाया एक कीड़ा जिसका सवाब एक जबल उहद के बराबर है अल्लाह देंगे, और कोई कब्रिस्तान में जनाजा दफन हो जाए वहां तक ठहरे तो दो पहाड़ों के बराबर अल्लाह अज्र देंगे। तकरीबन तमाम अइम्मा किराम के यहां जुमा के बाद सुनन है, जुमा के बाद नमाजें हैं, लेकिन आप देख लेना जुमा की नमाज के बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो 50% से बड़ा तबका बाहर आपको रास्ता पर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। उनके पास एक घंटा बाहर खड़े रहने के लिए वक्त है, लेकिन मेरे महबूब की सुन्नत अदा करने का वक्त नहीं। खाली सुन्नत के दावे करने से कुछ नहीं होता, जितना अपना सकते हैं वो तो अपनाओ। जब इतना वक्त हम बाहर गुजार सकते हैं तो क्या अल्लाह के घर में और ठंडी हवा की छांव में हम क्या सरकार की ये सुन्नतें नहीं अदा कर सकते। कितनी ही सुन्नतें ऐसी है कि जिनको जिंदा करने की अजबत जरूरत है। हदीस पाक है मन आहिया सुन्नती फसादे उम्मती फलो अजरो शरीर, जिसने मेरी सुन्नतों को जिंदा किया मेरी उम्मत के फसाद के जमाने में, वो मुर्दा सुन्नतों को जिंदा किया तो यूं फरमाया उसको 100 शहीदों की शहादत का जो अजर होता है वो तन्हा इस सुन्नत के जिंदा करने वाले को मैं दूंगा। तो सीरत से कोई भी बयान खाली नहीं, सरकार ने पूरी नमाज पढ़कर दिखाई और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया कि सल्लू कमा राय तो मुनी उसल्ली, जैसी मैंने पढ़ी है नमाज इस तरह की नमाज तुमको पढ़नी। अक्सर लोग कहते हैं सरकार की तशरीफ आवरी का मकसद क्या था, अल्लाह के बंदों को लोगों की गुलामी, मादियात की गुलामी से निकालकर अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जोड़ने के लिए नबी आते हैं। और एक बात अच्छी तरह समझ लेना, कोई नबी और कोई रसूल ना मुकम्मल शरीयत लेके नहीं आया। किसी नबी की शरीयत ना मुकम्मल नहीं है, लेकिन सरकार की शरीयत कामिल तरीन है, मुकम्मल तरीन है। इसलिए आपकी तालीमात सब नबियों की तालीमात से आला और बेहतरीन है, क्योंकि आप नबियों के सरदार हैं। आप किताब लेके आए, वो किताब किताबों की सरदार है। आप दीन लेके आए, वो दीन अज्ञान का सरदार है। इसकी सरदारी को लोगों ने मान लिया है। गांधी जी ने जब सीरत की किताब पढ़ना शुरू कर दिया, एक जील खत्म हो गई, दूसरी जील शुरू की। जील खत्म होने के बाद अफसोस करने लगे कि इतने पाकीदा अखलाक के इंसान की कोई और किताब होती तो मैं पढ़ता। और गांधी जी के साहबजादे ने लिखा कि कोई भी दुनिया में सरकार की सीरत का मुताला करने वाला और आपकी तालीमात को पढ़ने वाला इस बात के इकरार के बगैर बाकी नहीं रहेगा कि वो ये मजबूर हो जाएगा कहने पर कि इतना आलमी पैमाने पर फैलने वाला दीन तलवार से नहीं कर सकता। अगर तलवार है तो अखलाक की तलवार है। अखलाक की बुलंदियों का क्या मेयार है सरकार के यहाँ? आज हमारा अखलाक की हाल बदतर और जवाल पजीर हो चुका है। बेटे को बाप के साथ बात करने की कमीज नहीं, बेटी को मां के साथ गुफ्तगू करने का शरीका नहीं है, बड़ों को छोटों के साथ कैसे पेश आना है और छोटों को बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, ये कोई तरीका कोई सलीका हमने सीरत से फायदा उठाकर नहीं हासिल किया। ये रोजमर्रा की चीजें हैं। सरकार की सीरत घर से लेकर बाजार तक और बाजार से लेकर मस्जिद तक और मस्जिद से लेकर जंग के मैदान तक और शहरों से लेकर गांव तक और गांव से लेकर मुल्कों तक के लिए है और सरकार के जमाने से लेकर कयामत तक के लिए है। मैं एक बार हमेशा कहा करता हूं, सहाबाए किराम ने कोई किताब नहीं लिखी जैसी आज रोजाना किताबें आ रही है, लेकिन इन्होंने सरकार की जिंदगी से जो फैज हासिल किया, जो फायदा उठाया, उसका आलम यह था कि लोग इनकी जिंदगियों को देखकर किताबें लिखते हैं और बड़े बड़े मेडल हासिल करते हैं और इनाम हासिल करते हैं। इन्होंने तो अपना इनाम जन्नत के वास्ते उठा के रखा और अपनी जिंदगी को ऐसा बनाया कि सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा को देखते जाओ और अपनी जिंदगी देखकर अपनी बनाते चले जाओ। सात हदीस है इस सिलसिले में, फरमाया सादी कन्नो जो मेरे सहाबा आसमान हिदायत के चमकदार सितारे हैं, इनमें से जिनकी राह पर चलोगे इंशाल्लाह मंजिल मकसूद ही पाओगे, कई दो राह होने का सवाल पैदा नहीं होता है। सरकार के बहुत से मौजूदा हैं, 2000 से ज्यादा मौजूदात का तस्करा मुख्तलिफ मुहद्दिसीन और मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने किया है, लेकिन मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने तदवीन हदीस में लिखा है 1,24,000 करो देश सहाबाए किराम सरकार के जिंदा मौजूदात में, हर सहाबी को देखते जाओ तो हर गुजरा रंग बुए दीगर हर एक के अंदर एक आपको अजीब खूबी और एक अजीब कमाल नजर आएगा। अब अखलाक की बुलंदी की हम बात करते हैं, उससे पहले शायर का ये फारसी शेर सुने के क्या कहता है। फरमाते दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तू के बा दुश्मना नजर तेरी रहमतों से और तेरी इनायतों से जब दुश्मन महरूम नहीं रहते तो दोस्त क्या महरूम होगा। सरकार तो जिधर जिधर से गुजर गए हैं वहां वहां अखलाक के गुलशन सजाते चले गए हैं। इसलिए सबसे बड़ा पहलू सरकार का जो मुअज्जिन जिक्र फरमाते तसव्वुफ का खुलासा भी देखा जाए इबादतों का खुलासा भी देखा जाए तो इंसान का अखलाक बनना है उसका अपनी जिंदगी में बुरी चीजों को दिल से निकालकर अपने दिल को आईने की तरह जो है वो चमकाना है। अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल ये मदीना मुनव्वरा में सरकार के आने से पहले सरदारी के लिए पर तोल रहा था। कुछ लोग पहले से पर तोलते हैं कि हमको कुछ कुर्सी मिल जाए। इसने अपनी भाग जमाई थी, अपना सिक्का जमाया था कुर्सी के लिए, सियासत के लिए, और सियासत सियाह और सब यानी सब कालकों का खुलासा है। अच्छे आदमियों का इंतजार है, गांधी जी को विचारों को लिखना पड़ा कि अच्छी सियासत करनी हो तो हजरत अबू बकर को देखो और हजरत उमर रजी अल्लाह को देखो। ये सरकार के दो हीरे तैयार किए हैं, ये गुलामों को देखते जाओ तो सरकार की सियासत की चमक का अंदाजा लगा सको। जब सहाबा किराम का यह आलम है तो फिर सरकार की सियासत और पाकीजगी का क्या आलम होगा अंदाजा लगाओ। मदीने में अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल अपनी सरदारी का बाजा बजवा रहा था और तरह तरह के काम करता था कि सरदारी साबित हो जाए। असल में तो सदर हर्जा के नशीनत सदर, सदर तो वो होता है कि जहां चला जाए खुद ब खुद सदारत के मकामात उसकी तरफ आगे बढ़ जाए कि आइए सदर साहब आपकी ये जगह है, उसको धक्के ना मारने पड़े। वो सदर नहीं होता जिसको लोग धक्के मार मार के बनाते हैं सदर। मेरे आका जहां चले जाए सदर है। सरकार के होते हुए मजाल क्या है, कोई नमाज पढ़ा दे। नबी के होते हुए नमाज में इमामत का किसी का हक नहीं, यहां तक कि सरकार की सलात जनाजा का भी कोई इमाम नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल जब सरकार मदीने तशरीफ लाए तो एक अंसारी सहाबी जो सरदार थे वो बीमार हो गए, उनका नाम साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह। हुज़ूर को पता चला तो आयादत के लिए गए। बीमार की आयादत करना सुन्नत है। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर सरकार ने 7 हुकूक बयान फरमाए, उनमें से एक हक यह है कि जब मुलाकात वो सलाम करे, जब छींक पर अल्हम्द कहे तो हमको जो है उसका जवाब देना चाहिए यरहमुकल्लाह। और जब वो बीमार हो जाए तो उसकी आयादत करना, और जब इंतकाल हो जाए तो जनाजे में शामिल होना। ये हुकूक है। मौजूदा दौर तो हकतलकियों का दौर है, हकतलकियों का दौर है। मैं कहा करता हूं आयादत करने भी जाए तो चूंकि आयादत का मशहूर तरीका किन्नी आता, इसलिए आयादत भी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले के लिए, यानी बीमार आदमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि आयादत करने वाला जाते ही पहला जुमला कहता है मैं तो बोल ले भाई गया, बोलो चालू माफ कर दो। खासतौर से माँ बहने तुम तो बहुत लेवा गए हैं, क्या इनके इलाज नहीं, इनके भाभी साहब आपको इलाज नहीं करते इनका। अब वो बेचारा समझता है कि ये मेरी बीवी शायद मुझे पहुंचाने के चक्कर में, देखो ये इसने भी आके कहा ना, हालांकि वो बिचारी मर रही होती है, रात दिन खिदमत कर रही होती। सरकार ने आयादत का तरीका बता दिया, सभी बताया है, सरकार ने बताने में बाकी क्या रखा है, बताया तो बहुत है और बताया हुआ हमको भी लोग बहुत बताते हैं, लेकिन हमारा जिंदगी में कान अल्लाह ने कहते हैं उनको दुआ दिए इसीलिए हैं कि इधर से सुनो इधर से निकाल। सहाबा सुनते थे, उनको रिमाइंड नहीं करना पड़ता था, बस अमल तो अमल, दूसरी और कोई बात वो जानते ही नहीं। लेकिन और चुनांचे का मुरब्बा उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया जो हम लोग रात दिन करते हैं। अयादत के लिए तशरीफ ले गए सरकार, अयादत ने फरमाया बीमार के पास जाओ तो बीमार से कहो लाभा सतुहुर इंशाल्लाह, ये बीमारी तुम्हारे लिए दर्जात का सबब बन जाएगी, अल्लाह गुनाहों की माफी का जरिया बनाएंगे, और आगे चलकर यूं कहो कि मेरे लिए भी दुआ करना, बीमार के लिए तुम भी दुआ करो और बीमार से दुआ की दरखास्त करो कि तुम मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह की रहमत फेरे फिर रही है तुम्हारे, तो तुम्हारे करीब फरिश्ते रहमत के नुजूल कर रहे हैं, तुम्हारे उठेंगे हाथ और फरिश्तों की आमीन हो जाएगी तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे यहाँ का फकीर भी बैनुल अक्वामी है, सबके लिए दुआ करता है, मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के अल्लाह तुमको नमाजी बना दे, अल्लाह तुमको करोड़पति बना दे, खुद हमारे पास भी मांगता है मस्जिद में नहीं आता है। ये सब ट्रेजेडियां जमा हो गई है हमारे पास, इसलिए हालात में घिरे हुए हम लोग। और सरकार जा रहे थे आयादत के लिए, बीच में अब्दुल्ला इब्ने उबै इब्ने सलूल की मजलिस आती थी, उसने बैठक के अंदर मजलिस से करता था रोजाना, और उसके चेहरे चांटे उसके पास आते रहते, इधर उधर की खबरें लाके देते, कुछ लोगों का यही मशगला होता है। इत्तेफाक से सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, सोचा अब्दुल्ला इब्ने उबै की मजलिस है, मदीने का सरदार है, सलाम करता चल। सरकार गधे पर सवार, उस जमाने की सवारी गधा की है, जैसे मौजूदा जमाने का स्कूटर है बाइकें हैं, ये गधा है हमारे जमाने का, और घोड़ा है और ऊंट है, ये हमारी बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं फोर व्हीलर वही है उस जमाने के अतबार से। हुजूर तशरीफ ले गए तो अब रास्ते कच्चे और गुबार उड़ा, तो अब्दुल्ला इब्न उबै इब्न सलूल ने अपने मुंह को बंद किया और सरकार जाके बैठे, तो कहा भाई आप आते हैं और आकर जो है हमारी मजलिस में देखो आपने बिल्कुल धूल धूल कर दिया, गुबार कर दिया, क्यों आप आते हैं यहाँ। सरकार ने फरमाया दीन की दो बातें सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि जरा सलाम कर लूं, यहाँ सहाबा भी है मेरे और तुम भी बैठे हो, तो मैंने सोचा दीन की बात कर लूं। ये गज़वे बद्र से पहले का वाकया, सरदारी का भूत सवार है अब्दुल्ला इब्ने उबै इब्ने सलूल को, कहने लगा आइंदा मजलिस में आकर हमको कुछ बात न कहो, तुमको अपनी बैठक में जो बात करना है करना। एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर कहा अल्लाह के रसूल सलाम अलैहि, और आप जो कहना है बिल्कुल कहते जाइए, देखते हैं क्या नहीं कहने देता। हुजूर ने फरमाया झगड़ा कराने नहीं आया, मैं झगड़े मिटाने के लिए आया, मेरी तो दुनिया में आने की वजह तस्मिया ही जुल्म को खत्म करना है, अखलाक की चादरें बिछाना है, इंसानियत की बेहतरीन मेराज लोगों को दिखलाना है, और मकामात अखलाक जो है उनकी बुलंदियां उससे तुम्हें छुआने के लिए मैं आया। मतलब मैं दावत नहीं दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि मेरा आने का मकसद झगड़ा खत्म करना है, झगड़ा करना नहीं। बड़ी बात कही सरकार ने देखी अखलाक की तालीम इस तरह दी जाती है, शायद ने अच्छी बात कही। दुनिया को सताने डर से वफा दिए और जिस रग गुजर से गुजरे गुलशन और आकर यूं कहा कि ला तो अब बेरू आ हमारे ऊपर गुबार न उड़ाओ। चंद दिन के बाद बद्र का वाकया पेश आया और बद्र के बाद अब्दुल्ला इब्न उबई ने देखा कि यहां तो अल्लाह की मदद बेशुमार आ रही है और कामयाबियां कदम चूम रही है, तो इसका मिजाज ठंडा पड़ गया। बद्र के मौके पर हुजूर के चचा हजरत अब्बास कैद हो गया है, अब कैदियों के साथ बरादर का सुलूक, चाहे वो करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। रात को बांधा गया कैदियों को, सख्त बांधा गया, टाइट एकदम बांधा। सुबह में सरकार का सर झुका हुआ था, साहब ए किराम बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल बहुत गमगीन है, फरमाया रात को मेरे चचा अब्बास और दूसरे मेरे रिश्तेदारों की आह और सख्त बांधने की वजह से उनके दर्द और कर्ब में डूबी हुई आवाज ने मुझे रात को सोने दे दिया। दामाद आ गए अबुल आस इब्ने रबी, बेटी मक्के में है और दामाद तय होकर मुशरिकीन की फौज में से आए हैं, पांव अजोना बांधा उनको भी दिया है, रिश्तेदार हो के कोई भी हो, अंधा कानून नहीं है सरकार के यहां, इंसाफ एक नजर से बराबर किया जाता है, सबको बांधा है। फरमाती दिया दे दो, मक्के कहलवाया बेटी को कि अगर दामाद को छुड़ाना है मेरे और तेरे शौहर को छुड़ाना चाहती है तो फिदिये के लिए रकम वहां से भेज दे, तब छूटेगा। लड़की ने मां का दिया हुआ शादी के वक्त का हार निकाल कर रख दिया कि मेरे अब्बा की खिदमत में पेश कर देना मेरे शौहर की रिहाई के लिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो हजरत खदीजा का बेटी को दिया हुआ हार सामने आया तो सरकार की आंखों से सारों कतार आंसू जारी हुए। साहब इकराम ने आज किया कोई बात है सरकार, फरमा हार देखकर मुझे हजरत खदीजा की पूरी जिंदगी याद आ गई, मेरे मक्के की जिंदगी याद आ गई। किस जतन के साथ बेटियों को शादी के वक्त ये मां ने हार पहनाया था, मुझे खदीजा की ममता याद आ गई, उसकी मोहब्बत याद आ गई। दुनिया में लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को कुछ नहीं दिया, तो मुझे ये बताइए कि इतने अरसे के बाद बीवी के हाथ का दिया हुआ बेटी का हार सरकार को बीवी की याद दिला रहा है, भूले नहीं है सरकार। और क्या आलम है, जब घर में बकरी जबा होती है तो सरकार फरमाते खदीजा की सहेलियों को मत भूलना, और फरमाया हजरत खदीजा को वस्त जन्नत में उसकी दीनी कुर्बानियों की वजह से अल्लाह ताला ने सफेद मोतियों का बेहतरीन महल अदा किया है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की बहन आई, आवाज सुनी बाहर से, तो अपनी चादर उतारकर बिछाई फर्श पर और फरमाया बैठ जाओ, खदीजा की बहन आई है, तेरी आवाज ने मुझे खदीजा की याद दिलाई है। औरतों के सिलसिले की तालीमा और حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا دیا ہے، دنیا کی خواتین کو کیا دیا ہے، وہ مرتبہ جو دنیا نے چھین لیا تھا ایک بیوی کا وہ اس کو واپس کیا ہے، اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اتنا بڑا مرتبہ نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے شہزادہ چارلس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ پوری دنیا میں ان کا عورت کو وہ مقام دینا چاہے جو اسلام نے دیا ہے وہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عباس کو ضرورت تھی کرتے کی اور کر بہت لمبا، کسی کا کرتا فٹ نہیں ہوا، تو عبداللہ ابن عمر ابن شلول کا کرتا جو تھا وہ اس نے اتار کر دیا کہ حضور میرا قد اور ان کا قد برابر ہے، سرکار نے بدل لے مجبوری قبول فرمائی۔ پوری زندگی ریشہ درامی کرتا رہا عبداللہ ابن عمر۔ اور دوستو عالم یہ تھا کہ کوئی دقیقہ اور کوئی موقع میرے سرکار کی دینی دعوت کو روکنے کا اور سرکار کی عزت پر انگلی اٹھانے کا اور سرکار کو بدنام کرنے کا کوئی دقیقہ فرو گزارش نہیں کیا، لیکن یہ کرم ہے اللہ کا کہ جس کی حفاظت اللہ کرنا چاہے دنیا مل کر اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ وہ چراغ جس کو اللہ نے جلا رکھا ہو دنیا کے لوگ مل کر وہ چراغ بجھا ہی نہیں سکتے، چراغ وہ بجھائے گا جس نے جلایا ہے، باقی کسی کی مجال نہیں ہے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ بیت اللہ شریف کی اینٹ سے ہی ایک پتلی ٹانگوں والا انسان اللہ کے حکم پر ختم کر دے گا، اینٹ سے اینٹ بجائے گا، ایک ایک اینٹ جن جن کے گرائے گا۔ علماء نے لکھا کہ قیامت سے پہلے حج کا جو سلسلہ ہے بند ہو جائے گا، یہ علامت ہوگی کہ قیامت نہیں رہے گی۔ لگاتار ریشہ دوائیوں کا سلسلہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کھلتی رہی، روزانہ آتی رہی کہ رات دن سازشیں کر رہا ہے، صبر و تحمل سے سرکار نے کام لیا، اتنا صبر کیا کہ عبداللہ ابن عبید ابن سلول کی نازیبا حرکتوں کو خود ان کا بیٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک موقع پر غزوے سے واپس آ رہے تھے، عبداللہ ابن عبید ابن سلول نے کہا اب ہم مدینے جا کر ذلت والوں کو نکال دیں گے، ہم عزت والے ہیں، یہ ایمان والے ذلت والے۔ میرے والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے مومن کبھی بھی اللہ کے حکموں پہ چل کے ذلیل نہیں ہو سکتا، یہ ہم نے خالی ذلیل 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 بول کر اپنے آپ کی ذلت اختیار کر رکھی ہے، ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ جس کے پاس دین اسلام جیسا شاندار دین ہو اس کے ذلیل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہیرے کو آپ کیچڑ کے اندر ڈال دیں وہاں بھی وہ ہیرا ہی رہے گا، کنول کیچڑ کے اندر اٹھتا ہے لیکن وہ کنول ہی ہوتا ہے۔ یہ حالات نے ہمیں جو ہے پریشان کیا ہے، لیکن یہ حالات کی پریشانی کی اصل میں ہماری لائی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے سرکار کے طریقوں کو زندگیوں میں اپنایا ہوتا تو ہر سنت انسان کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ہے، ہر سنت کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب ذرا ناکامی محسوس کرتے تھے تو اپنی زندگی میں جائزہ لیتے تھے کہ کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے کامیابی میں قدم پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ نسواک والی سنت چھوٹ رہی ہے، مسواک والی سنت چھوٹ رہی ہے، تو صبح میں مشورے کے بعد ناکامی کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ مسواک نہیں کر رہے ہم لوگ، جلدی کر رہے ہیں اور ایک سنت چھوڑ رہے ہیں، اس لیے ناکامی ہو رہی ہے۔ ہم لوگ ہماری ناکامی تلاش کرتے ہیں مادیات کے اندر، حالانکہ مومن کو ناکامی کے اسباب اپنے گناہوں میں اور اتباع سنت کے چھوڑنے میں تلاش کرتے ہیں۔ अब सुबह में विश्वास करने लगे और जितनी दरख की शाखें थी सब उछल उछल कर तोड़ी और विश्वास बराबर मुंह में चबाना शुरू किया। दुश्मनों ने देखा कि अब तो ये लोग दांत तेज करने लगे हैं, कच्चा खा जाएंगे हमको। तो उन्होंने कहा भाई तुमको कामयाबी दे दी हमने। हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि सुन्नतों में अल्लाह ने एटम बम से ज्यादा ताकतें रखी है, तुमको एटम बम की जरूरत नहीं, सुन्नतों पर अमल की जरूरत है। सुन्नतें जिंदगी में आएंगी तो कामयाबियां सामने से कहेंगी कि आइए तशरीफ लाइए। अमल सुन्नत पर होना चाहिए। देखो भाई मसला ये है कि सुन्नत पर चलने का दावा ये भी बड़ा दावा है। बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा खानकाह के अंदर जाकर जायजा लिया, भाई क्या बना रहे हैं खानकाह में खाना। लोगों ने कहा कि सालन बन रहा है, गोश्त बन रहा है, रोटियां तैयार हो रही है। माशाल्लाह ये शानदार रोगनी रोटियां और बेहतरीन सालन खाए जा रहे हैं और क्या दावा है सुन्नत पर चलेंगे। ये सुन्नत है क्या? नहीं सरकार सुन्नत तो नहीं है। जब खाने में तुम्हारा ये आलम है, जब तुम्हारा खाने के अंदर ही आलम है तो फिर जो है आगे क्या करोगे? जो चीज बनती है अंदर से, खाना सुन्नतों के मुताबिक अंदर जाएगा तो सुन्नतें निकलेंगी जिंदगियों में, और खाना ही मुर्दा और बगैर सुन्नत का जाएगा तो फिर अंदर से तो ऐसी चीजें निकलनी है। इसलिए रिश्ते हलाल के जरिए से आमाले सालेहा वजूद में आते हैं, तैयब चीज से तैयब चीज वजूद में आती है और नापाक चीज से नापाक चीज वजूद में आती है। मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि दारुल देवबंद के कोई उस्ताद ने बॉलीवुड की रणवीर से तो शादी नहीं करती, वहां की नालायक लड़की से तो शादी नहीं की, फाहिशा से शादी नहीं की। अरे भाई वो वहां की मशहूर है, ये देवबंद में मशहूर है। अरे इनका जोड़ ही नहीं बैठ सकता क्योंकि कुरान करीम ने कहा अल-खबीसात लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात। नापाक लोगों के लिए नापाक लोग हैं, नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें हैं, पाकीजा मर्दों के लिए पाकीजा औरतें हैं। सरकार से पाकीजा कोई नहीं तो अजवाले मुतहरात से औरतों में पाकीजा कोई नहीं। कभी कभी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा करती थी कि मेरे अब्बा का मर्तबा देखा, मेरे अब्बा का मर्तबा ऐसा है कि तुम्हारे अब्बा को भी मेरे अब्बा के हाथ के ऊपर बेयत करनी पड़ी और खिदमत का जज्बा लेकर चल रहे हैं तुम्हारे अब्बा मेरे अब्बा जान का। तो मेरे अब्बा का दर्जा मेरे अब्बा का मर्तबा कितना ऊंचा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती थी कि बेटी यकीनन तेरे अब्बा के दर्जे को मेरे अब्बा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन एक बात अर्ज कर। जी अपनी जान फरमाइए। फरमाए बात असल में यह है कि कयामत के दिन हर बीवी अपने शौहर की उंगली पकड़कर उठेगी, तो जब कयामत का दिन आएगा हश्र में जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो तू हजरत अली की उंगली पकड़कर उठेगी और सोचने में किसकी उंगली पकड़कर उठेगी। यह है मर्तबा बेटा। मां तो माई होती है ना, जाहिरी बात है कि बेटी का दर्जा और बेटे का दर्जा बाप से कितना भी बढ़ जाए इनमें, लेकिन जाहिरी बात है बाप बाप होता है, मां मां होती है, बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है। कभी बेटा बाप को मशवरा देता है अब बाप को समझ नहीं पड़े, तो बाप ने ही कहा कि समझ नहीं पड़ती थी जब तक तू पैदा हुआ। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मौजूदा दौर के 14वीं सदी के बेटे भी सदी की तरह के बात चल रही थी। हजरत अब्बास को अब्दुल्लाह इब्ने उबै ने सलून में कुर्ता दिया था। आखिरी जमाना आया, बेटे को पता चला कि अब्बा कहते हैं कि इज्जत वाला जिल्लत वाले को निकाल देगा, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार को हम जाकर मदीने से निकाल देंगे, तो मदीने से बाहर अपने बाप के ऊंटनी की रिकाब पकड़कर कहा कि मेरे बाप पहले ये फैसला कर दे कि इज्जत वाला तू है या मेरा रसूल है। तू मेरा बाप सही, लेकिन मोहब्बतों की दुनिया में अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़कर तेरी मोहब्बत नहीं है। तू बता दे कि कौन इज्जत वाला है। बाप ने हाथ जोड़कर कहा बेटा नहीं सोचा था कि तू मुझ पर इतना बरस पड़ेगा, तलवार उठाकर कत्ल करने तक चला जाएगा। अरे पता चलेगा तेरे रसूल को तो वो भी मना करेगा कि बाप पर हाथ नहीं उठाते, तलवार नहीं चलाते बाप के ऊपर। फरमाया मैं पूछूंगा बाद में मेरे नबी को, लेकिन आज तुझसे ये फैसला लेना है कि तेरी जबान से सुनना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल की इज्जत ज्यादा है तेरी इज्जत से। हर बेटे को अपने बाप से मोहब्बत होती है, बाप की गलत बात भी चला लेता है कभी कभी बेटा, और कभी बाप भी अपनी बेटे की गलत बात को चला लेता है मोहब्बत के जाम में। कभी कभी आदमी उसकी गलतियों को छुपाने की कोशिश करता है, ढांकने की कोशिश करता है और उसकी तावीलात करता है, लेकिन यहाँ साफ साफ बात है कि रसूल की मोहब्बत से आगे बाप की मोहब्बत नहीं जाएगी। इसको मोहब्बत कहते हैं। बस सच्ची बात तो यह है कि इकबाल का जो शेर है बड़ा अजीब है, बमुस्तफा पेशरा बेरसा के दीन मालूस। अपने आप को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करो, इसलिए कि दीन वहीं से बनता है, मेरे रसूल की अदाओं से दीन बनता है, मेरे सरकार के इशारों से दीन बनता है, मेरे सरकार की बातों से दीन बनता है। मैं और आप गुस्से में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन नबी की जबान पर गुस्से में भी हक के अलावा कुछ नहीं आता। लिखने वाला लिख रहा था और गुस्सा सरकार को आया और साहबी ने इशारा किया मत लिखना, सरकार गुस्से में है। सरकार ने फरमाया गुस्से में हूं लेकिन लिखते जाओ, नबी की जबान पर गुस्से में भी हक के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब इंतकाल का वक्त आ गया, जिंदगी में नहीं इंतकाम लिया हो ना तो आदमी कभी कभी मौत के वक्त इंतकाम ले लेता है। पठान के पैसे बाकी थे उठाने के लिए, जिंदगी में दिए नहीं देने वाले हैं, तो जिससे लेने थे उसको कहा कि मत घबरा, मैं तेरा जनाजा दफन तो नहीं होने दूंगा, कब्रिस्तान में जाके बैठूंगा, यहां से तो तू भाग जाता है घर से, वहां से कहां भागेगा, वसूल करते ही तुझे अंदर दफनाने दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेटा अश्कबार होकर आया, सुनने की बात। अखलाक किसे कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं आपको। आकर कहा मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। अच्छा तुम गमगीन हो गए? कहा हां। लेकिन सरकार एक दरखास्त, आपको मेरे अब्बाजान के कफन में चादर अपनी देनी पड़ेगी। सरकार ने पढ़ना मंजूर है मुझे, तेरी रिजोनी के लिए तेरे बाप के कफन में मेरी चादर हो। हुजूर अपना लुहावे दहन डाल दीजिए जरा मेरे अब्बा के मुंह में, इनका बेड़ा पार हो जाए। मेरे सरकार का लुहावे दहन हजरत अली की आंख में लगा तो जिंदगी भर आंख की तकलीफ कभी नहीं हुई, और हजरत अबू बकर के जख्म पर लगा तो जहरीले जानवरों के काटने का कोई असर हजरत अबू बकर पर लगा। लोहावे दहन डालने का वादा कर लिया सरकार ने, कब्र में उतरने का वादा कर लिया सरकार ने। किसके लिए? कोई मुक्सिम नहीं है, रात और दिन रेशा दवानियों में जिसने एक कर दिया उसके साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला क्या तारीख के लोग नहीं पढ़ते? इससे बढ़कर अखलाक की तारीफ और क्या हो सकती है? दुश्मनों के साथ क्या सुलूक करना चाहिए वो हमें बताया है। शहीदम के मर्दान राले खुदा दिले दुश्मन आलम न कर दंद तन थोड़ा कर मयसर शवर मकान के बाद दोस्तान खिला पस्तुजन। अल्लाह के बंदों ने और अल्लाह के वलियों ने दुश्मनों के दिल बिगिंद उठाए। मुझे एक बात अर्ज करने दीजिए इस मौके पर, शायद थोड़ी तकलीफ आपको हो जाएगी लेकिन ये बात अर्ज करना है। एक शायद था, वो सरकार की शान में बड़े कसीदे और बड़ी नाखानी करता था, अच्छे अच्छे अशआर लिखता था, उसके अशआर छपते थे किताबों में, रिसालों में लोग पढ़ते थे। जब किसी ने पढ़े उसके मोहब्बत भरे अशआर सरकार की शान में, तो उसका गर्वीदा और आशिक होकर कहा कि ये किस कदर जबरदस्त आशिक रसूल होगा, मुझे चलकर देखना चाहिए और इसके हाथ चूम लेना चाहिए, इसके होंठ चूम लेना चाहिए। तलाश करते हुए जिस शहर का वो बाशिंदा था वहां पहुंचा, उनके घर पर नीता का बाजार गए, बाजार में तलाश किया, एक नाई के यहां बैठकर अपनी दाढ़ी तराशवा रहा है उल्लू दस। अब लोगों ने बताया कि मोहतरम जो कुर्सी पर तशरीफ फरमाए हैं, जिसकी खिदमत में ये नाई लगा हुआ है, ये इन्हें आपके मतलूब शायद। खून के आंसू रोना शुरू कर दिया, मैं इतना लंबा सफर करके आया तो देखता क्या हूं, हाय हाय मेरी आंखों में ऐसा मंजर न देखा होता तो अच्छा होता, ये क्या मंजर देख लिया मैं तो दिल में बलबला लेके आया था कि आशिक रसूल की जिंदगी और चेहरे पर सुन्नतों की बहार होगी, तो ये तो सुन्नतों की बहार को और सुन्नतों के गुलशन को उजाड़ने पर लगा हुआ है। हाय हाय तेरी नाक क्या और तेरी जिंदगी क्या, चीख निकल गई। और चीख कर नाई की दुकान पर कहा, आगा रीस की तराशी क्या कर रहा है तू, दाढ़ी तराशवा रहा है, ये तो सरकार की नहीं अंबिया किराम की सुन्नत है और बड़ी प्यारी सुन्नत, और याद रखो सुन्नत के मुताबिक रखना सुन्नत है, खाली पट्टी छोटी सी बनाना सुन्नत नहीं है, इसको सुन्नत डाई नहीं है, ये पट्टी अपने मिजाज से बनाई है, सरकार की सुन्नत नहीं है ये डाई, रखना है तो पूरी तरह से रख दो। हमारे उस्ताद थे वो कहा करते थे कि पढ़ना है तो दिल लगा के पढ़ो, नहीं तो दिल लगा के भाग जाओ। रखना है, अल्लाह ताला ने आपको इतना जज्बा दे दिया, रखा है आपने, इतनी अल्लाह ने हिम्मत दे दी आपको कि सुन्नत आपने रख ली। दो पार्टनर थे, मुसलमान थे गैर मुस्लिम थे, दोनों काम अच्छा कारोबार लाखों का कारोबार कर रहे थे। एक दिन वो गैर मुस्लिम ने मुसलमान से कहा, डायरी कैमरा के लिए, तो उसने क्या बोला मुसलमान ने, कि आपने दाढ़ी हाथे धंधो करवाना चाहिए, आपने टेक्सटाइल ना धंधो करवाना चाहिए, आपकी दाढ़ी मारी दाढ़ी के अंदर ताने नड़ता रू, आपने गुंडा में कहीं नड़ता से दाढ़ी के अंदर नहीं, ये होते हैं बस उनका, मैंने तेरे को पूछा तू नहीं खतना करवा था, मैंने पूछा तेरे को तू दाढ़ी की छेड़ छेड़ क्यों कर, और सुन आज के बाद तूने ये सुन्नत पर एक भी जुमला कहा पार्टनरशिप फिनिश कर दूंगा। उसने कहा तुमने करोड़ों में नुकसान कह गया है, उन्होंने कहा करोड़ों में नुकसान बर्दाश्त करी सको, बाकी सुन्नत की तोहनी मार की बर्दाश्त नहीं है, सुन्नत की तोहनी बर्दाश्त नहीं हो सकती। अब शायद तो शायद ही होता है ना, उसने कहा बेचारे ने फारसी में आगा रीशनी तराशी तू दाढ़ी छिलवा रहा है, बैठते अल्लाह के बंदे मैं तुझे मिलने आया, सुन्नतों की बात सुनकर मैंने सुन्नत रखी और तू क्या कर रहा है बैठ के, शायर था, उसने कहा रीश्मी तराशम वले दिले कसे नमी तराशम, मैं दाढ़ी तो काटता हूँ लेकिन किसी के दिल के टुकड़े नहीं करता। तो वो भी अल्लाह वाला बड़ा दिल जला था, वो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का मतवाला भी बड़ा आशिक था। उसने कहा हाँ हाँ तू किसी का दिल तो नहीं तोड़ता लेकिन सुन्नत निकाल के सरकार का दिल तोड़ रहा है। चीख पड़ा हो शायर, आधी दाढ़ी छोड़ दी, हाथों को चुम लिया, पेशानी को चुम लिया, फरमाया मेरे अशआर से तेरी क्या इसलाह होगी, तेरे जुमले ने पूरी जिंदगी के लिए मुझे सुन्नतों का आशिक बनाया, मुझे सुन्नतों का पाबंद बनाया। सुन्नतों को कभी भी मामूली ना समझे, कोई सुन्नत मामूली नहीं। एक जुमला अर्ज करूं आपको, दस्तरखान पर अगर कोई दाना कोई जर्रा गिर जाए, ये जर्रा उठाकर अगर सुन्नत की निस्बत से खा लिया, एक जर्रे का कोई वैल्यू नहीं होता, एक जर्रे की कोई कीमत नहीं बनती, एक जर्रे का कोई पैसा नहीं बनता, एक जर्रे का कोई ऐलान नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने सुन्नत की निस्बत से कि मेरे महबूब ने दस्तरखान पर गिरे हुए दाने को खाने के लिए फरमाया, अगर ये दाना इसने खा लिया, ये दाना इतना कीमती हो जाएगा कि खाने वाले को उठाकर जन्नत में पहुंचा देगा। अल्लाह हमें सुन्नतों का इश्क दे दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम काम दिलजोई के कर दिए, यहां तक के जनाजा तैयार हुआ अब्दुल्लाह इब्ने उबै इब्ने सलूल का, बदनाम जमाना मुनाफिक और मुनाफिकों का सरदार, जिसके लिए कई इशारती आयतें कुरान करीम में उतरी थी। हजरत बाबू के आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तड़प गए, क्या कर रहे हैं सरकार, सलाते जनाना, और वो भी जालिम मुनाफिक की जिसने रात दिन आपका दिल दुखाया था, जिसने रात दिन आपका दिल तोड़ा था, जिसने आपकी दीनी हसीन बनाई हुई तामीर पर कोई कीचड़ उछालने की मिट्टी नहीं छोड़ी थी, अब आखिरी वक्त में अपनी सलात के जरिए से क्या खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं सरकार। मेरी राय नहीं बनती कि आप सलात जनाजा पढ़ाए इस मुनाफिक की, लात मार दीजिए। मुस्कुराकर सरकार ने फरमाया उमर तेरे जज्बे की कदर करता हूं लेकिन अल्लाह की तरफ से नमाज न पढ़ने का हुक्म नहीं आया, इसलिए मैं खड़ा होकर नमाज तो पढ़ाता हूं। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का इत्तेबा का जज्बा सुनाऊं आपको, सहाबा कैसे आशिक थे। हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं, कांपते हुए हाथों के साथ होंठ लगे हैं हजर अस्वद पर। ये पत्थर असल में जन्नत में बेहतरीन मोती अल्लाह ने तैयार फरमाए थे, तीन की याकूत जन्नत का। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में उतारा तो ये हदीये में हजर यानी बेहतरीन जन्नत का मोती दिया। फरमाते इसकी रोशनी इस कदर इस कदर इस कदर थी कि अगर वो रोशन होता तो रात की दुनिया में नहीं आती, दिन ही दिन रहता, और मशरिक में पत्थर रखते तो मगरिब में उसका उजाला चला जाता और आफ्ताब की रोशनी की कोई हैसियत नहीं रहती, लेकिन अल्लाह ने छुपा दिया उसकी रोशनी को। हजर अस्वद के बारे में फरमाया यमीनुल्लाह के फिलहाल जमीन के अंदर अल्लाह का दाना हाथ है। जो हजर अस्वद को बोसा दे गोया यमीनुल्लाह को यानी अल्लाह के हाथ को बोसा दे रहा है। और याद रखना कुल यकीन यमीनुल अल्लाह का हर हाथ दाया हाथ है, बाया हाथ अल्लाह के यहां है ही, क्योंकि वो कमजोरी पर दलालत करता है और अल्लाह के यहां कमजोर वाली कोई सिफत नहीं। صحابہ کرام کا مجمع ساتھ ہے. یہ عجیب و غریب مناظر ہوا کرتے ہوں گے. پھر ایک تاریخی جملہ تھا, میں ہمیشہ کہتا ہوں صحابہ جو جملے کہتے ہیں سرکار کی تربیت یافتہ ہے نا, ان کے جملے تاریخی ہوتے ہیں. ہمارا تو جملہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسری مرتبہ یہ نہ دوہرا ہے تو اچھا ہے, ایسا کہتے ہیں لوگ. لیکن سرکار کا جملہ تاریخی, قرآن کی دعوت تاریخی, قرآن کے فیصلے تاریخی, قرآن کی آیتیں تاریخی, صحابہ کرام کا ایک ایک ارشاد اپنی جگہ سونے چاندی کی طرح اور ہیروں کی طرح چمکدار کہ اس کی چمک قیامت تک محسوس کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب و غریب باتیں شاد فرمائی. وہ فرمائے حجر اسود, خطاب کیا ہے حجر اسود کو, پتھر کو خطاب کر سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے بدلنے کے لیے پتھر پر رکھے اور اعتراض تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کو ایک خاص قسم کی شرمگاہ کی لائن کی بیماری ہے, نبیوں کو اللہ کوئی موذی بیماری نہیں دیتا جس کی وجہ سے لوگ دور ہو جائیں, کیونکہ نبی سے لوگوں کو کنیکٹ کرنا ہے, بیماری کی وجہ سے لوگ دور ہو جائیں ایسا نہیں ہوتا. اس لیے سرکار کو مرض النسان میں لوگوں نے مشورہ دیا کہ جب حضور پر بے ہوشی طاری ہو تو دونوں جبڑے کھولے جائیں اور جبڑے دونوں کھول کر ایک دوا کی ہے لدود کڑوی قسم کی دوا وہ آپ کی بانچوں کے اندر جو ہے ٹپکا دی جائے تو پسلیوں میں جو بخار ہوتا ہے وہ اس سے دور ہوتا ہے. اس زمانے کی جو یونانی پدھتی ہے وہ اس کے اعتبار سے علاج کر رہے ہیں. یہ پدھتی کا لفظ سبھی بھائی کی عقیدت میں کہا ہے. اور سرکار ہوش میں آئے تو منہ میں کڑواہٹ محسوس ہوئی, کڑواہٹ محسوس ہوئی. سرکار نے فرمایا تم نے وہ مجھے وہ کڑوی دوائی پلائی کیا؟ صحابہ کے جو پاس خدام تھے انہوں نے کہا جی پلائی گئی. فرمایا میں نے نہ کہا تھا نا تم کو, نبی جس چیز کو نہ کہے اس کو کرنے سے اللہ کی پکڑ آتی ہے. تم کو اللہ کی پکڑ ہو نا, تم کیا چاہتے ہو اللہ کی گرفت آئے؟ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ نہ آئے, لٹاؤ سب کو. جن جن لوگوں نے یہ دوا ڈالنے میں مدد کی ہے نا ایک دوسرے کی, ان سب کے منہ میں یہ دوا ٹپکاؤ, یہ عذاب کے نام ہے اور تمہاری پکڑ آخرت میں نہ ہونے کا ایک طریقہ ہے. صرف میرے چچا نے حصہ نہیں لیا تھا, حضور نے بے ہوشی میں بھی معلوم کیا ہے کہ حضرت عباس نے نہیں حصہ لیا, ان کے منہ میں مت ٹپکانا, باقی سب کے منہ میں ٹپکاؤ. نبی کی اور پھر ارشاد فرمایا, میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں. پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کوئی موذی بیماری نہیں دیتا, ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں, ایسی گھن رکھنے والی اور ایسی انفیکشن رکھنے والی اور متعدی بیماریاں جسے گجراتی میں اندر چیتی روگ کے وام آئے تو کوئی نبی نے اللہ تو نہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا, لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے, لوگ کسی کو نہیں چھوڑتے. ایک طرح مجھے کہہ رہے تھے کہ اپنے مقامی جو علماء ہیں ان کا اتنا وہ نہیں ہے. میں نے کہا مقامی سرکار مکے میں تھے, مکے والوں نے قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ مدینے میں تمہاری قدر ہوگی. مدینے والوں نے ہاتھ مار دیا تو ایسا ہاتھ مار دیا کہ سعد ابن معاذ نے کہا کامیابیاں اگر ہمارے سروں پر اور ہمارے بچوں کے سر کاٹ کر راستے میں بچھائیں اور کامیابی اللہ کے رسول آپ کو ملے تو ہم سر کٹا دیں گے راستے میں بچھا دیں گے اور آپ کو کامیاب کر دیں گے. کوئی عشق کی ایسی داستان لائے, کوئی تاریخ بتائے اتنی محبت کا, کوئی ہمیں نمونہ بتلایا دنیا میں نہیں بتا سکیں گے اور مدینے جیسی بستی نہیں لا سکیں گے. اب चेंज करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां रखे और नए कपड़े जो खुश्क थे वो लेना चाहते थे, इसमें पत्थर के अंदर घरघराहट शुरू हो गई। जैसे हेलीकॉप्टर में आती वो शुरू हो गई और बिल्कुल हिलना शुरू हुआ। बेचारे इस दुनिया वाले इतनी मेहनत करने के बाद जाकर के हवाई जहाज उड़ा, कितने मशीन फिट हुए जब जाके जो है हवाई जहाज उड़ा। अल्लाह ताला जब उड़ाने पर आते हैं तो बगैर मशीन के पत्थरों को उड़ा देते, आवाज बुलंद हुई, कपड़े लेके पत्थर ने उड़ना शुरू किया। अरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सऊदी या हजर, सऊदी या हजर, अरे वो मेरे पत्थर ये कपड़े लेके कहां जा रहा है, ये भी भूल गए कि मैंने कपड़ा नहीं पहना। लकड़ी लेके उसके पीछे दौड़े, पत्थर को खिताब किया कि नहीं। अब सवाल पैदा होता है, नबी कोई काम अकल में ना आए वो नहीं करता भाई, पत्थर सुनता है नहीं सुनता, तो फिर क्यों आवाज दिया? पता चल गया था हजरत मूसा अलैहि सलाम को कि पत्थर उड़ नहीं सकता, जब उड़ रहा है तो इसमें जिंदगी के आसार पैदा हो गए हैं, जब उड़ सकता है तो मेरी बात सुन क्यों नहीं सकता, इसलिए खिताब किया। और यूं कहा सऊदी या हजर, सऊदी या हजर। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने पत्थर को खिताब किया, उनका अजर अस्वद, मैं जानता हूं कि तू पत्थर है और मैं पत्थरों का पुजारी नहीं हूं, मैं पत्थर का परस्तार नहीं हूं, मैं अल्लाह का परस्तार हूं, मैं मुवाहिद हूं, मैं एक अल्लाह का मतवाला हूं। अकल में नहीं आता तुझे गुस्सा देना, तेरा एहतराम करना, लेकिन मैं मजबूर हूं, मेरे आका की अदाओं पर कुर्बान हूं, मैंने मेरे महबूब के वोट वहां देखे हैं जहां मैंने अभी वोट लगाए, इसलिए सरकार की अदा ये मेरी सुन्नत पर अमल की एक नमूना बने, इस बिना पर मेरे रसूल की इत्तबा में मैं गुस्सा दे रहा। यह है इत्तबा रसूल हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। मत पढ़ाइए नमाज, अल्लाह ने रोका नहीं है मुझे, इधर नमाज पढ़ाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उधर अल्लाह की तरफ से कलाम उतर गया, पढ़ना वला तो आज के बाद से किसी मुनाफिक के ऊपर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्र में उतरने का कोई सवाल पैदा नहीं होगा। लेकिन मैं एक लतीफ नुक्ते की तरफ आपको और आपके जहन को मुतवज्जे करना चाहता हूं, उस पर आज की बात खत्म कर दूंगा। इतनी रेशा दवानियां करने के बावजूद हुजूर का अखलाकी ग्राफ कितना ऊंचा है, ये तो देख लिया ना आपने, ये तो समझ में आया ना आपको। दुश्मनों के साथ सरकार का अखलाकी रवैया क्या था ये दुनिया देख ले। दूसरा नुक्ता यह है दोस्तों कि अगर अंदर ईमान नहीं है, अंदर ईमान नहीं है, ईमान तो अंदर की माया का नाम है, मोहब्बत अंदर होती है, इश्क अंदर होता है, ईमान अंदर होता है, दिल में होता है, कल्ब में होता है। अगर किसी के पास दौलत ईमान नहीं है, उसको कफन सरकार की चादर में लिया जाए, उसके मुंह में लुहावे दहन रसूल का पड़ जाए, उसकी नमाज़े जनाज़ा नबी पढ़ा दे, उसकी कब्र में नबी उतर जाए, इसको काबतुल्लाह के गिलाफ के अंदर लपेट कर दफनाया जाए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इनमें से कोई चीज इसकी मफ़रत के लिए काफी नहीं है, नहीं होगी मफ़रत। दुनिया को सरकार ने ये बता दिया मैं ये सब कुछ कर गुजरूंगा, लेकिन तुम्हारे पास अंदर दौलत ईमान न हो तो तुम अल्लाह को अल्लाह के यहाँ तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं, और ये बाहर के तबर्रुका कबर के अदाब से और आखिरत के अदाब से तुम्हें नहीं बचा सकते। क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सुनना है और भी सिलसिला जो है जारी है और सारी है, और अब जो है वक्त होने वाला है 12 बजने से पहले मेरा वादा था हाफिज साहब के साथ बात खत्म करने का, इसलिए आज की बात इसी पर खत्म करते। मैं अर्ज करना चाहता था सिर्फ कि अखलाकी नुक्ते नजर से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेयार क्या है और अखलाकी तालीमात किस कदर आला और बुलंद है, उसका सिर्फ एक नमूना आज मैंने आपके खिदमत में पेश किया। अल्लाह ताला अखलाकी बुलंदियां हमको भी नसीब फरमाए। मैं बार हमेशा अर्ज करता हूँ, नमाजें हम मस्जिद में पढ़ते, तिलावत घर में बैठते करते, जिक्रुल्लाह हमारा कोई देखता नहीं है, देखेगा तो अखलाक देखेगा हमारे, हमें कैसा बर्ताव इस मुल्क में रहकर यहाँ के बाशिंदों के साथ करना है, अपनों के साथ कितना सुलूक अच्छा कर रहे हैं, उससे ज्यादा हमें गैरों के साथ अच्छा सुलूक करना है। आने वाला यूं न कहे कि ये तो सब भाई लोग हैं, डॉन लोग हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि यूं कहना चाहिए कि भाई इनके पास चलो, ये तो बड़े बाखलाक लोग हैं, क्या अच्छी बात करते हैं। अंग्रेज के यहां दुकान में से कोई चीज न लेना हम, फिर भी वो थैंक यू और बाय बाय कहता है, और हमारे यहां जब आता है जब तो आइए आइए सब आइए, लेकिन अगर कुछ नहीं लिया तो क्या क्या पटपटती थी, क्या जरूरत थी, खाली खाली हमारे को मेहनत करवाना है। नहीं, बड़े अखलाक ये हैं कि खाली हाथ से जा रहा है उसको और ज्यादा जो है आप रिस्पॉन्स दें, उसको और अच्छी तरह से पेश आए, कोई बात नहीं साहब, आज नहीं पसंद आया, फिर कभी जो है आपकी पसंद की चीज आई आइए तशरीफ लाते रहिएगा, फायदा। और पहली मरतबा ऐसा लिपा पोती करके बैठता है कि दूसरी मरतबा उसके आने का सवाल जगह नहीं आवा, चल लीजिए ना कह नहीं आवा, नहीं यही अखलाक है कि दूसरों के साथ और अपनों के साथ तो सबको अच्छे लोग होते हैं। मेरे नबी की कामयाबी क्या है, दुश्मनों के साथ क्या जबरदस्त शुरू किया। और एक बात बताऊं अखलाक की, सच्ची बात यह है दोस्तों के बाहर तो सब अच्छे वो हा, लेकिन घर में जाके पूछो पूरी दुनिया के अंदर हीरो बन के घूमने वाला घर के अंदर जीरो होता है। घर में तुम्हारे अखलाक क्या है, घर वालों के पास इंटरव्यू लिया जाए कि भाई घर वालों में इनका क्या है। सरकार घर में आते थे तो घर में चांदना ही चांदना हो जाता था। हजरत आयशा फरमाती लना पा लना शमसुन वलीला पाती शमसुन व शमसी एक तो अरबी के साथ तो अपना वैसे भी दूर का ही लेना देना है, तर्जमा करता हूँ आपके लिए। फरमाते हैं एक तो आसमान के ऊपर है आफ्ताब और एक है मेरा आफ्ताब। हजरत आयशा फरमाती हैं आसमान के आफ्ताब से आफ्ताब मदीना और मेरे घर में शुरू होने वाला आफ्ताब कहीं ज्यादा बेहतर है, घर में सरकार का क्या आलम होगा, यह हजरत आयशा बयान करती है। दूसरा शहर बड़ा अजीब का है, शम्स समाए तत्लो बाद फजर व शम्सी ताले उन बाद फरमाते कि दुनिया में जब आपका शुरू होता है तो फजर में शुरू होता है, दिन को चांदना हो जाता है, लेकिन मेरा महबूब और मेरा ईशा के बाद दिन भर की मेहनतों के बाद घर में आता है तो घर में चमक चमक हो जाती है, मेरा तो ईशा के बाद आपका कुलू होता है। यह है सरकार के लिए खिराज अकीदत एक जोजा का, और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला सरकार के घर में अखलाक की बुलंदियों को सलाम पेश कर रही हूँ। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, जितने इखलास हो गए अल्लाह उनको भी कबूल फरमा ले, और जो अच्छी बातें उनमें हुई अल्लाह उन्हें भी अपने फजल से मंजूर फरमाए, हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और आइंदा जो इजलास आती हैं अपने फजल से अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमाए। दूसरी बात यह है कि जिन हजरात ने बिचारों ने इतनी मेहनत की, रोजाना हमारे लिए इंतजाम किया, अल्लाह ताला उन तमाम मेहनत करने वाले जवानों को बेहतर से बेहतर जो है बदले अता फरमाए, दारैन में जजा अता फरमाए, हमारे लिए सुन्नतों को सीरत की बातों को सुनने के लिए खुशगवार माहौल पैदा किया। तीसरी एक बात दर्द के साथ मुझे अर्ज करनी है कि मोहल्ले में अतराफ और जवानी में माइक लगे हैं, रात को बहुत सी माँ बहने शायद आराम करना भी चाहती होंगी, लेकिन ये आवाज की वजह से बच्चे शायद परेशान होते होंगे, शायद उनके आराम में खलल आता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ सरकार की निस्बत से थोड़ी कुर्बानी ले दी है हमने, अल्लाह ताला इसके बेहतर बदले जो है हमें अता फरमाए, और हमारी नस्लों में अल्लाह शब जिंदादार और तहज्जुद गुजार जो है वो ये जागने की बरकत से पैदा फरमा दे। कोई लड़की बीमार है उसके लिए दुआ करना है, किसी मस्जिद की तामीर के सिलसिले में चंदे का वैसे मैं ऐलान नहीं करता, लेकिन इसमें दरखास्त की गई है आप हजरात दालपुरी वाली मस्जिद के लिए भी कुछ इनायत फरमाते हैं। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما هو أهل وافعل بنا ما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا حل المشكلات، يا كافي المهمات، يا دافع البليات، يا شافي الأمراض، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ بہت مجرم ہیں ہم اور اے اللہ اقراری پاپی ہیں ہم، تو نے اتنا بہترین نبی ہمیں عطا فرمایا اور اس نبی نے کیا کیا ہم کو نہیں بتایا، پوری زندگی کی ڈگر چل کر بتا دیا، پوری زندگی جی کے بتا دیا، پوری زندگی میں اخلاق کی خوشبوئیں پھیلا کر بتا دی، اے اللہ تجارت بھی بتا دی اور اللہ عبادت بھی بتا دی اور اللہ عیادت بھی بتا دی اور اللہ عادت بھی بتا دی، اے اللہ ان تمام چیزوں کو زندگی میں اتارنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں سچا عشق رسول عطا فرما دے، اے اللہ محبت رسول عطا فرما، اے اللہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما، اور سر سے سنتے ہیں اے اللہ اور سنیں گے اور سنتے ہی رہیں گے، اے اللہ تیرے پیارے حبیب کا ذکر ختم نہیں ہوتا اور اے اللہ سنتے سنتے ہمارا دل بھی نہیں بھرتا، لیکن اے الہ العالمین ہمارے کشکول عمل سے بھر دے، ہماری زندگیوں میں سنتوں کی خوشبو اور عمل کو جاری ساری فرما دے، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے الہ العالمین آج ہم سنتوں کے نام پر کچھ ایسی چیزیں بھی کر رہے ہیں جس کا سنتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اے اللہ ہم سنتوں سے بہت دور زندگی گزار رہے ہیں، اللہ جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا عشق دے دے, پیار عطا فرما دے, اپنی رضا والی زندگی دے دے, تیری مان کر زندگی گزارنے کا جذبہ دے دے. اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے الہ العالمین نمازوں کا عاشق بنا دے. اللہ تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے. اے اللہ ہماری زندگی باخلاق بنا دے. اللہ با حیا بنا دے. اللہ بے حیائیوں سے حفاظت فرما. اللہ جو بیماریوں میں شفا عطا فرما. اللہ مسجدوں کی تعمیر آسان فرما. اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما. اے اللہ مساجد کی مراکز کی خانقاہوں کی مقابر کی عبادت فرما. اللہ تیرے راستے میں چلنے والوں کی نصرت فرما, مدد فرما, یعنی مددگاری فرما. اے اللہ جو درونے خانہ پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما دے. اللہ جن کے حقوق دب چکے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دے. اللہ جن کے حقوق تلف ہو گئے ہیں اللہ ان کو دلا دے. اللہ حق والوں کو ان کے حقوق عطا فرما دے. مظلوموں کی مدد فرما دے. ظالموں کی سر کو بھی فرما دے. اے اللہ مظلوموں کی جد سے نصرت کے فیصلے فرما دے. اے تو بند کی سعودتیں برداشت کرنے والوں کو اللہ عزت کے ساتھ رہائی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کو زندہ رکھ, جب وقت آخر ہو کلنے والی موت عطا فرما. اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما, محنت کرنے والوں کی مغفرت فرما, سننے سنانے والوں کی مغفرت فرما, اچھی باتوں پر عمل درآمد نصیب فرما. اللہ اس کی لفظوں کو معاف کر دے. اللہ درگزر فرما دے. ہم سب انسان ہیں, اللہ نسیان سے مرکب ہیں, کوئی نہ کوئی لفظیں ہم سے ہو گئی ہوگی. اللہ ہماری نسلوں میں دین دار لوگ پیدا فرما, علماء پیدا فرما, صلحاء پیدا فرما, قراء پیدا فرما. اے اللہ علماء پیدا فرما, غوث کتب اور ابدال پیدا فرما. اے الہ العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ انہیں متقیوں کا امام بنا دے. اے اللہ انہیں نیک بنا دے. اللہ با اخلاق بنا دے. اللہ دنیا کی ترقیات بھی عطا فرما. اللہ دنیا کا علم بھی انہیں عطا فرما. اور اللہ تیری رضا کے لیے محنت کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری تجارتوں میں برکتیں عطا فرما. اور اللہ جن کی تجارتیں ٹھپ ہیں ان کو جاری ساری فرما دے. اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. اصل میں آپ کا مجمع بڑا ہے.